हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तीन असुरों ने रानी माँ पर आक्रमण कर दिया था और उनसे उनकी जादुई छड़ी छीन ली थी। जैसे ही तारा ने ये सुना, वो काफी घबरा गई थी और फिर रानी माँ की ओर देखने लगी थी। रानी माँ की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, जिन्हें देखकर तारा का दिल टूट गया था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, रानी माँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी जिंदा है। आप अच्छी तरह जानती है मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन आपकी आंखों में किसी भी तरह का आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कहकर तारापरी ने जल्दी ही रानी माँ को गले से लगा लिया था। अपनी बेटी की बात सुनकर रानी माँ मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखने लगी थी और कहने लगी थी, बेटी, उन लोगों ने मुझे साफ साफ धमकी दी है, अगर मैं अगले 24 घंटे में उनसे अपनी जादुई छड़ी नहीं छुड़ा पाई तो वे लोग मेरी जादुई छड़ी को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। इसका मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मेरी जादुई छड़ी को नष्ट कर दिया तो पूरे परीलोक का जादुई कवच हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी जादुई छड़ी के कारण ही पूरा परीलोक सुरक्षित है। अगर वो जादुई छड़ी नष्ट हो गई तो कोई भी कभी भी आकर परीलोक पर आक्रमण कर सकता है और फिर परीलोक को बचाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर तारा उनकी ओर देखकर कहने लगी थी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो जादुई छड़ी परीलोक का प्रतीक है और मैं अपने गौरव को इस तरह से मिटने नहीं दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही परीलोक जाऊंगी। जैसे ही तारापरी ने ये कहा, सोनल परी तो खुश हो गई थी, लेकिन रानी माँ हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, बेटी, तुम परीलोक कैसे आ सकती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो परीलोक में आना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और वैसे भी कुलगुरु जी ने तुम्हें 2 वर्षों के लिए पृथ्वीलोक पर रहने का वरदान दिया है, और अगर तुम इस बीच अपना मकसद पूरे होने से पहले परीलोक लौट आओगी तो कहीं उनका वो वरदान वापस ना हो जाए और फिर तुम्हें और भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तभी तारापरी ने आगे बढ़कर अपनी माँ रानी माँ का हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी थी, मेरे लिए आपसे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है रानी माँ। आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरी माँ है। इतना ही नहीं, आप पर मेरे साथ साथ पूरे परीलोक की जिम्मेदारी है, तो मैं आपको इस मुसीबत की घड़ी में कैसे छोड़ सकती हूँ। तभी सोनल परी थोड़ा सा आगे आई थी और कहने लगी थी, तारा, तुम नहीं जानती हो वे राक्षस कितने खतरनाक हैं। वे असुर बहुत ही बलवान और शक्तिशाली हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमने उन पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की होगी? जब वे लोग रानी परी से उनकी छड़ी छीन रहे थे तब सभी परियों ने मिलकर उन पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ी ही आसानी से वे लोग बच निकले थे और उन्होंने सभी पर एक बिजली वाली शक्ति से प्रहार किया था, जिसकी वजह से सभी के शरीर में काफी कमजोरी आ गई थी। उसके बाद जैसे तैसे मंत्रों का उच्चारण करके हम लोग यहाँ तुम्हारे पास तक आए हैं। तभी तारा थोड़ी देर कुछ सोचने लगी थी और कहने लगी थी, आखिरकार वो जादुई छड़ी हासिल करने के पीछे उनका मकसद क्या है? क्या वे परीलोक पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं या फिर वे लोग कुछ और करना चाहते हैं? तभी सोनल परी हल्का सा कम कपाते हुए स्वर में कहने लगी थी, वो असल में जादुई छड़ी के बदले में परीलोक से एक मांग कर रहे हैं। तारा की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थीं और कहने लगी थीं, आखिरकार जादुई छड़ी के बदले वे असुर परीलोक से कैसी मांग कर सकते हैं, और ऐसा क्या है जो उन्हें परीलोक से चाहिए? तभी रानी माँ तारापरी का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी थी, तारा, उनकी क्या मांग है क्या नहीं है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें सिर्फ ये सोचना है कि उन असुरों से हम अपनी छड़ी कैसे वापस लाएं, क्योंकि वे असुर इस वक्त पाताल लोक में है। तभी तारापरी को एहसास हुआ कि अभी भी कुछ बात है जो रानी माँ और सोनल परी उससे छिपा रही थी। तभी तारापरी ने थोड़ा सा आगे बढ़कर रानी माँ का हाथ पकड़ लिया था और उनकी दाईं आंख में देखना शुरू कर दिया था। तारापरी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल्दी ही अपनी माँ के मन की बात जान ली थी, और जैसे ही सारा सच तारापरी के सामने आया उसकी आंखें बोझिल होने लगी थी और उसकी आंखों से आंसू मोटे मोटे मोती निकलने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच जानने के बाद कि वे असुर जादुई छड़ी के बदले में आखिरकार किस चीज़ की मांग कर रहे थे, तारापरी को उस राक्षस का आभास हो गया था जिस राक्षस ने तारापरी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। तभी तारापरी बेदर्दी से अपने आंसुओं को साफ करते हुए रानी माँ से बोलने लगी थी, आखिरकार आप इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? आखिरकार आप मुझे क्यों नहीं बता रही हैं? तभी सोनल परी ने कहना शुरू कर दिया था, आखिरकार तुमने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके सारा सच जान लिया है, तो अब रानी माँ तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि ये बात जानने पर तुम्हें उस राक्षस का स्मरण हो जाएगा, और रानी माँ नहीं चाहती थी कि तुम उस राक्षस को किसी भी सूरत में याद करो। तभी तारापरी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी थी, उन असुरों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपकी जादुई छड़ी के बदले वे हर रोज एक परी को अपने मनोरंजन के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मांग रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे असुरों को जीने का कोई अधिकार होना चाहिए। और रही बात उस राक्षस की, हाँ, उस राक्षस की कड़वी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब आपकी बेटी पहले जैसी कमजोर नहीं है। अब आपकी बेटी के अंदर जिन्नातों का वंशज है, जो उसे अपने आप में ही काफी शक्तिशाली बनाता है। इतना ही नहीं, एक प्यार करने वाला पति है जो उस पर जान निछालर करता है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए रानी माँ, आप बेफिक्र होकर परीलोक जाइए। अगर आज रात को उन्हें एक परी अपने कक्ष में चाहिए, तो उन्हें आज रात को परी जरूर मिलेगी। कुछ सोचते हुए तारा ने अपनी माँ और सोनल परी को वहां से जाने के लिए कह दिया था, और साथ ही साथ तारा परी ने रानी माँ से कहा था कि जाने से पहले जो आपने सब कुछ बिगाड़ दिया है वो सब कुछ ठीक कर दें, क्योंकि दिन में वो अपनी पत्नी होने का हक अदा करेगी और रात में वो अपनी बेटी बनने का हक अदा करेगी। कहीं ना कहीं कुछ सोचते हुए तारा ने अपनी माँ से वहां से जाने के लिए कह दिया था। रानी परी ने तारा परी की बात मानते हुए इस बार अपने बाएं हाथ की चुटकियां बजाई थीं, और चुटकियां बजाते ही सब कुछ एकदम सामान्य हो गया था, और एक बार फिर अमन की आवाज तारा के कानों में सुनाई देने लगी थी। अमन की आवाज सुनते ही तारा ने जल्दी ही रानी माँ और सोनल परी को विदा कर दिया था और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद अमन ने तारा को एक पल देखा था। तारा बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। तारा काफी ज्यादा मध्यम हल्के कपड़े पहनती थी, बिल्कुल भी वो फैंसी या फिर छोटे कपड़े नहीं पहनती थी। वो केवल हिंदुस्तानी नॉर्मल फ्रॉक, सूट, साड़ी वगैरह कैरी करती थी। आज तारा ने एक हल्का सा अनारकली सूट पहना था जिस पर कोई ज्यादा खास वर्क नहीं था। प्रिंटेड अनारकली सूट था जिसमें वो बड़ी ही खिली खिली खूबसूरत लग रही थी। तारा को कुछ देर अमन ने ऐसे ही देखा था। उसके बाद तारा अमन के पास आई थी और कहने लगी थी, अब हम ऑफिस चलें। अमन ने तारा का हाथ कसकर पकड़ लिया था, उसे अपनी ओर खींचते हुए सीने से लगाकर उसके माथे पर एक किस कर दिया था और कहने लगा था, हाँ हम ऑफिस चलेंगे, लेकिन साथ में।
जल्दी ही दोनों एक साथ गाड़ी में ऑफिस के लिए रवाना हो चुके थे। पूरे रास्ते अमन ने तारा को प्यार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। जब तक ऑफिस में ही आया था, पूरे रास्ते तारा को प्यार करता रहा था। तारा अमन के छूने से, अमन के प्यार करने से बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन आज उसके दिलो दिमाग में एक अलग ही तरह की उलझन थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग में आज जो कुछ भी रानी माँ ने उसे बताया था वही सब गूंज रहा था, और उसका दिल नफरत से भर उठा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज रात को ही वो परीलोक जाएगी और वहां जाकर उन असुरों का वध करके रानी माँ की छड़ी को आज़ाद करवाएगी। लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात की भी थोड़ी सी परेशानी, आशंका थी कि अगर परीलोक जाने के बाद वो वापस पृथ्वी लोक नहीं आ पाई तो। कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसके दिलो दिमाग में चल रही थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी माँ को इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इन्हीं सब उलझन के बीच अमन का ऑफिस आ गया था। तारा जल्दी ही अमन के साथ उसके ऑफिस के अंदर जाने लगी थी। जैसे ही अमन का ऑफिस आया, तारा गाड़ी से उतरकर नीचे जाने लगी। अचानक से अमन ने तारा का हाथ पकड़ लिया था, उसे अपनी ओर खींच लिया था। तारा हैरानी के मारे बुरा हाल था, और वो उलझन भरी नजरों से अमन की ओर देखने लगी थी और कहने लगी थी, आखिरकार आपको अचानक से हुआ क्या है? आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अभी तो पूरे रास्ते आप प्यार करते हुए आए हैं, अब क्या हुआ? अब ऑफिस आ गया है क्या? आपका ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? तभी अचानक अमन ने तारा के गालों को बड़े ही प्यार से छूते हुए कहा था, क्या हुआ है? तुम कुछ उदासी लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है बताओ? अमन ने बड़े ही प्यार से तारा से पूछा था, क्योंकि पूरे रास्ते भले ही बार बार वो सिर्फ और सिर्फ तारा को ही प्यार किए जा रहा था, भला इतनी खूबसूरत पत्नी उसके करीब थी, भला वो उसे कैसे छोड़ सकता था। जैसे ही तभी तारा ने बड़ी ही अपनी उलझनों को एकदम से अपने चेहरे से गायब करके अमन की ओर देखते हुए कहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस सिर्फ सोच रही थी कि हमारा बच्चा कैसा होगा। जैसे ही तारा को अचानक कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने बच्चे का नाम ले लिया था। अचानक अमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और उसके होंठों को प्यार से चूमते हुए कहने लगा था, मुझे पूरी उम्मीद है हमारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जितना खूबसूरत होगा। ऐसा कहकर उसने एक बार फिर तारा के होंठों को जोर से चूमा था और फिर अपने आप को छुड़ाते हुए तारा जल्दी से बोली थी, ये क्या कर रहे हैं, शायद आप भूल रहे हैं, आप ऑफिस के मालिक हैं और आप अपनी गाड़ी में इस वक्त बाहर बैठे हुए अपनी पत्नी के साथ रोमांस कर रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन ने उसकी ओर देखते हुए कहा था, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। इस वक्त मेरी पत्नी मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। और हाँ, अगर अब ऑफिस आ ही गए हैं तो बाकी का प्यार तो हम लोग घर जाकर भी कर सकते हैं, तो चलो क्यों ना एक साथ ऑफिस के अंदर चलें। ऐसा कहकर अमन ने तारा का हाथ पकड़ लिया था और बड़े ही प्यार से गाड़ी से उतरा था और तारा का हाथ अपने हाथों में थामकर ऑफिस के अंदर जाने लगा था। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, सभी लोगों ने तारा और अमन का एक साथ अभिवादन किया था। उन्होंने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया था। तारा और अमन साथ में एक परफेक्ट कपल और बहुत ही खूबसूरत कपल लग रहे थे। और तारा की खूबसूरती तो ऐसी थी कि कोई भी एक बार उसे देख ले तो बार बार देखता ही रह जाता, लेकिन उसका दिल नहीं भरता। राधिका के पिता तारा को मन ही मन में ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि अब तारा अमन की पत्नी थी। ये बात सभी के सामने आ चुकी थी, तो अब सभी के मन में तारा को लेकर बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ चुकी थी और सभी के सभी उन्हें बड़े ही प्यार से देख रहे थे। और अब कोई भी तारा को लेकर उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में नहीं सोच सकता था, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि वो उनकी अब लेडी बॉस है। जल्दी ही तारा अमन के साथ उसके केबिन में जाने लगी थी और जैसे ही वो अपने केबिन में गई तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि अक्षत खुराना अमन के केबिन में बैठा हुआ उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तारा और अमन ने ये देखा, उन दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं अक्षत तारा को देखकर मुस्कुराने लगा था। अक्षत की आंखों में तारा के लिए हवस साफ दिखाई दे रही थी।